अब अगर आगे हम हिजरत की बात शुरू करें कि 93 वीक में आपको हिजरत का हुक्म मिलता है कि नहीं, यहाँ लोग नहीं मानते, छोड़ दीजिए, अल्लाह की ज़मीन बड़ी है, हिजरत कर लीजिए, साथियों को लेकर आप चल पड़े। आपके घर के बाहर 11 सरदार नंगी तलवारें लेकर खड़े थे कि बाहर अगर आप आए तो हम आपको मार देंगे। दारुल नदवा में वो मारूफ मीटिंग हो चुकी थी जिसको अबू जाहल ने पेश किया, और नजदी शेख की सूरत में इबलीस ने भी उसमें हिस्सा लिया और मशवरा दिया कि सारे कबीले मिलकर अल्लाह के नबी को मार देते हैं और सब मिलके दियत भी दे देंगे, तुम्हारी जान छुटेगी। लेकिन उन्होंने मकर किया और अल्लाह का इरादा कुछ और था। नतीजा क्या निकला कि अल्लाह के नबी हज़रत अली को अपने बिस्तर पर सुला के लोगों की अमानतें देकर घर से निकले। सूरत यासीन की आयतें ज़ुबान पे थी और अल्लाह ने दुश्मनों की नज़रों से अपने नबी को बचा लिया। और इस तरह से आप अबू बकर सिद्दीक़ के घर पहुँचते हैं और अबू बकर ख़ुशी से रो पड़ते हैं कि अच्छा, मुझे आपके साथ हिजरत की इजाज़त मिल गई। ऐसे खुश हो रहे थे जैसे पीसी में खाना खाने जा रहे हैं या शायद वर्ल्ड टूर का टिकट मिल गया। कुर्बानियाँ देने वाले और सच्चे सिद्दीक ऐसे ही होते हैं, वो किसी हाल में अल्लाह के नबी को तन्हा नहीं छोड़ना चाहते थे। और गारे सौर में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो की मोहब्बत की दास्तानें भी हम कई बार सुन चुके कि कैसे अपने पाँव पे सांप को डसवा लिया लेकिन अल्लाह के नबी की नींद ख़राब ना होने दी। रास्ते में सुराका बिन मालिक ने पीछा किया लेकिन अल्लाह ने उसके पाँव पकड़ लिए और मौजज़ा देख कर आपका ईमान ले आया। बुरैदा असलमी ईमान ले आया, 70 लोग उसके साथ मुसलमान हो गए। कुबा में आप आ गए, लोग रोज़ आपका इंतज़ार करने के लिए बाहर आते। 14 दिन आप कुबा में रहे, मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी, जुमे के रोज़ मदीना के लिए निकले, रास्ते में नमाज बनू सालिम की मस्जिद में पढ़ाई और इसके बाद मदीना की तरफ आए। किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानियों की ज़िंदगी से गुजर रहे हैं, हम खुद से पूछें, हम अल्लाह के दीन के लिए घर छोड़ते, हिजरत कर सकते, गुनाहों से, पसंदीदा चीज़ों से, नाफरमानियों से, हराम से, हम तो एक रस्म से हिजरत नहीं कर सकते, हम तो एक अपनी ज़िंदगी की लग्जरियस चीज़ों में से कोई एक चीज़ नहीं छोड़ सकते। बड़ी हिजरतें तो बड़ी दूर की बात है और जो छोड़ सके वो अल्लाह की रहमत है। अल्लाह के नबी मदीना में दाखिल होते हैं और मदीना के गली कूचे दरो दीवार अल्लाह की तारीफ़ों से गूंज उठते हैं। उसी दिन से यसरब का नाम मदीना तो रसूल पड़ गया, जिसको आज हम मुख्तसरन मदीना मुनव्वरा या मदीना कहते हैं। हर कबीला आपका मेज़बान बनना चाहता था। आपने कहा नहीं, मेरी ऊँटनी अल्लाह के हुक्म की ताबे है, इसका रास्ता छोड़ दो, जहाँ बैठेगी वहीं जाऊँगा। पहले जहाँ ऊँटनी बैठी फिर उठ गई, वहाँ आज मस्जिद नबवी है। 2 यतीम बच्चों से वो ज़मीन ख़रीदी और उसको मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने कजावा पकड़ा और अपने घर ले गए। अल्लाह के नबी ने कहा जहाँ मेरी ऊँटनी बैठेगी वहीं जाऊँगा, और अल्लाह के हुक्म से ऊँटनी वहाँ बैठ गई। आपकी ऊँटनी की नकेल हज़रत साद बिन ज़रारा ने पकड़ी और ऊँटनी की खिदमत हज़रत साद के हाथ में आई। चंद दिन के बाद आपके घर के बाकी लोग, जिसमें हज़रत सौदा थी, हज़रत आयशा थी, हज़रत फातिमा थी, उम्मे कुलसूम थी, हज़रत उसामा बिन जैद थे, उम्मे ऐमन थी, ये सब भी मदीना पहुँच गए। और आपकी तीसरी बेटी हज़रत ज़ैनब जबुल आस की बीवी थी, वो बदर के बाद मदीना पहुँची। और आपकी जो चौथी बेटी हज़रत रुकैया हज़रत उस्मान के निकाह में थी, वो उस वक़्त हबशा में थी। कितनी कुर्बानियाँ दी लोगों ने इस दीन को लाने और पहुँचाने में, पूरे पूरे घराने जुदा हुए हुए थे। आज हम माल कमाने के लिए साल हर साल अपने घर वालों से दूर रहते हैं, पढ़ने के लिए हमारे बच्चे कितने कितने साल हमसे दूर रहते हैं, लेकिन कितनी कुर्बानियाँ मैंने अल्लाह के दीन के लिए दी, ये सवाल मुझे खुद से पूछना है। अब यहाँ से अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का वो दौर शुरू होता है जहाँ आप सिर्फ एक नबी ही नहीं, एक लीडर, एक मुस्लिम स्टेट के सदर या वज़ीर या कोई ऐसी बात जिसको आप समझने के लिए टाइटल दें। मदीना इस ज़मीन पर पहली मुस्लिम रियासत है। मक्का में मुसलमान पिसे हुए थे, मदीना में आकर अब सांस खुला, और अब जिम्मेदारियां भी बढ़ गई, क्योंकि अब लोगों को वो सेटअप दिखाना था कि इस्लाम जहां आएगा वहां खैर और बरकत को लाएगा। अगर मैं और आप आज के दौर में कहीं भी इस्लाम लाना चाहते हैं और हम अपने पाकिस्तान को इस्लामी बनाना चाहते हैं, तो उन्हीं बुनियादों पे काम करना पड़ेगा जिस पे आपने मदीना में आने के बाद किया। हमारे लिए अमली रहनुमाई मौजूद है। सबसे पहले आपने मस्जिद बनाई मदीना मुनव्वरा में। आज बहुत बड़ी मस्जिद है, लेकिन 150 से 150 लंबाई चौड़ाई थी इसकी। 300 स्क्वायर फुट की थी वो मस्जिद। आज शायद इससे बड़े तो हमारे अपने घर होंगे। आपकी बीवियों के हुजरे उस मस्जिद के किनारों पे बने। फिर आप अबू अय्यूब अल अंसारी के घरों से निकलकर वहां आ गए। मक्का से हिजरत करने के बाद जो लोग आ रहे थे हिजरत करके, उनको आबाद करना था। आपने बड़ी दूरंदेशी से काम लिया और एक महाजर और एक अंसार का रिश्ता अखुवत बना दिया। सगे भाइयों से भड़कर एक दूसरे के खैरख्वाह बने। अब मदीना का दिफा भी मतलूब था, तो आपने यहूद के साथ एक मुआहदा किया जिसे मीसा के मदीना के नाम से हम जानते हैं। दो बड़ी अहम शर्तें थी उसकी कि जब भी दो फरीकों में इख्तलाफ होगा फैसला अल्लाह के नबी करेंगे, और दूसरी बात है कि अगर बाहर से कोई मदीना पर हमला करेगा तो सब मिलकर दिफा करेंगे। ये वादा हो चुका था। आगे अगर हम नज़र डालें तो एक नाकाबले यकीन हद तक मुश्किल दौर शुरू होता दिखता है। आप सोचेंगे कि हम ये बातें क्यों सुन रहे हैं, हमें तो कोई अल्लाह के नबी की आंखों की बातें सुनाई जाती, सुरमे की बातें, गालों की, लाली की, जुल्फों की, जो अमूमन इस किस्म की महफिलों में हम सुनते हैं, और बुरी बात नहीं अगर हक के साथ हो और मुबालगे से पाक हो। अच्छी बात है बल्कि, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है उसके चेहरे और उसकी अदाओं से प्यार बहुत होता है। लेकिन आज की ये बातें अजीब बातें हैं, क्यों? क्योंकि नबी से मोहब्बत के दावे तो करने में, नबी की मोहब्बत की बातें तो हम बहुत कर जाते हैं, लेकिन नबी के जो प्रॉब्लम्स थे, जो नबी को मुश्किलात पेश आई, वो नहीं देखते। सिर्फ बोझल ना लगे आपको, तो यही बात जहन में रखिएगा कि आपको इस दीन को पहुंचाने के लिए कितने मुख्तलिफ महाजों पे लड़ना पड़ा। मक्का में तो एक दुश्मन था ना, कुरैश। मदीना में आए तो चौमुखी लड़ाई शुरू हो गई। तीन गिरोह और बढ़ चुके थे, यहूद, मुनाफिकीन और मदीना के इर्द गिर्द जो बद्दू लूटमार करते थे उनसे। हिजरत के बाद मक्का वालों ने भी इंतकामी जज्बात के साथ मुसलमानों का पीछा करना शुरू किया। अब्दुल्ला बिन उबई को ख़त लिखा कुरैश ने कि तुमने हमारे बागियों को यहाँ पना दे दी है, या तो इनको यहाँ से निकाल दो या हम तुम्हारे साथ जंग करके मर्दों को कत्ल करेंगे, औरतों को लौंडियाँ बनाएंगे। दूसरी तरफ कुरैश मक्का ने यहूद से भी साजबाज शुरू की। इनकी हिमायत हासिल करने के बाद मुसलमानों को धमकियाँ दी कि देखो हम मदीना पहुँच कर तुम्हें तहस नहस कर सकते हैं। इन हालात में फिर अल्लाह ने पहली बार मुसलमानों को दुश्मनों से लड़ने की इजाज़त दी। जंग की इजाज़त मिलती है 13 साल के बाद, शुरू में नहीं। पहले तबलीग का दौर होता है, पहले इल्म की बात है, पहले इल्मी जिहाद करो फिर शमशीर के साथ जिहाद करो, पहले कलम पकड़ो फिर तलवार पकड़ो। और जंग की इजाज़त मिलने के बाद नबी सल्लम ने हिजरत के सिर्फ 7 माह के बाद मदीना के इर्द गिर्द फौजी मुहिमात भेजी। और इस तरह के वाक़यात आते हैं, कैसे लगता है दिनों और हफ्तों के फ़र्क से आपको मुख्तलिफ जंगों में मुब्तला कर दिया गया। लेकिन इस वक्त जो चीज़ आपके दिल में होनी चाहिए सुनते हुए, वो क्या है कि हमारी ज़िंदगी में एक मसला आ जाए तो हम उसको ही कितने महीनों रगड़ते रहते हैं। खुशी आ जाए तो भी यही हाल है, और गम आ जाए तो फिर भी यही हाल है, अल्लाह की बना। लेकिन प्यारे नबी की ज़िंदगी कितने महाजों पे थी। फिर एंड पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या हम सिर्फ खाते पीते सोते पीते और सिर्फ नबी सल्लम से मोहब्बत की बातें करके ही उस जन्नत में पहुंच जाएंगे जहां वो अमली जंगों से गुजरे।